महाबंध पुस्तक पहिली लेक्चर नंबर 4 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुभात्मने नमः नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैशायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं सिद्धादद्धट्ठमला विशुद्ध बुद्धि अलद सौवत्था तिहुवन शिरसे हरया पसियंतु बढ़ारया सवे। यह श्री भगवान भूतबली भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का अपना विषय शुरू होता है। उसमें प्रथम पुस्तक अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रस्तावना आदि हमने देख ली पूरी विस्तार से, उसका प्राक कथन भी देख लिया है। अब यहाँ हमने जो मंगलाचरण अभी अभी गाया है वो अनुवादकर्ता का, उसमें मंगल बताते हैं। देखो, महाधवल नाम से प्रसिद्ध इस महाबंध महाशास्त्र की, इसका ही नाम महाबंध है, इसी का नाम महाधवल भी है। टीका निर्माण का कठिन कार्य निर्दोष तथा निरंतराय संपन्न हो इस कामना से वेदना खंड की धवला टीका के प्रारंभ में वीर सेनाचार्य कृत मंगल गाथाओं द्वारा पंच परमेष्ठी का पुण्य स्मरण किया जाता है। ये जो मंगलाचरण है वो वेदना खंड में, धवला टीका में, वेदना खंड में वीरसेन स्वामी ने किया हुआ है। उसका अर्थ है जिन्होंने ज्ञानावरण आदि अष्ट प्रकार के कर्म मल को दग्ध कर दिया है। दद्ध अट्ठमला, दद्धट्ठमला है ना, दग्ध ने दग्ध किया है, अठ प्रकार का मल है, आठ प्रकार के जो ज्ञानावरणादि कर्म मल है उसका दग्ध किया है। विशुद्ध बुद्धि है, जिन्होंने विशुद्ध बुद्धि यानी केवल ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों की उपलब्धि की है। पदार्थों की उपलब्धि हम क्या समझते हैं, हमें हासिल हो जाए, हासिल हो जाने क्या होता है, अपने पास आ जाती है, अपने पास रहती थोड़ी है। हम कहेंगे हम इतने करोड़ों रुपए के मालिक है, किधर है आपके जेब में कितना है? वो रखा है कहीं पर शेयर्स में, बैंक में, वहां उधर ही रखने जाओ और जाओ किसी के पास कुछ चीज लेने जाओ तो कहेंगे पैसे पैसे निकालो, उसको बोलना मैं करोड़पति हूँ। तो यहाँ कहते हैं ये पदार्थों की उपलब्धि यानी उन्होंने सबका पूर्ण बोध प्राप्त कर लिया है। त्रिभुवन सिर सेहरया, जो त्रिभुवन के मस्तक पर मुकुट के समान विराजमान है। पसियंत बढ़ारया सवे, वे संपूर्ण सिद्ध भट्टारक प्रसन्न होवे। अभी इसी का भावार्थ, आत्मा का सहज स्वभाव अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख तथा अनंत वीर्य है। ये तो उसका सहज स्वभाव है, और जो स्वभाव है वो किसी अन्य के द्वारा निर्मित नहीं है, वो अमर्याद होता है, उसमें कोई लिमिट नहीं होती है। मोहनीय ज्ञानावरणादि कर्मों का मल आत्मा में अनादि से लगा हुआ है, जिससे यह संसारी आत्मा जगत में परिभ्रमण किया करती है। सिद्ध भगवान ने उस कर्ममल का ध्वंस कर दिया है, यानी जीव ने जब इसका ध्वंस किया तभी वो सिद्ध हुआ, तब कहेंगे सिद्धों ने ध्वंस किया। विशुद्ध ज्ञान के कारण समस्त पदार्थों का बोध होता है। जिस प्रकार दर्पण के तल से मल दूर होने पर बाह्य वस्तुएं स्वयमेव दर्पण की निर्मलता के कारण उसमें प्रतिबिंबित होती है, उसी प्रकार कर्म मल रहित आत्मा में स्वतः सर्व पदार्थ झलकते हैं। निर्मल तथा पूर्ण बोध युक्त होने से तथा कर्म मल रहित होने के कारण सिद्ध परमात्मा जगत में श्रेष्ठ है, उनके द्वारा विश्व शोभित होता है। वे लोक के अग्रभाग में विद्यमान ईशत प्रागभार पृथ्वी के ऊपर अवस्थित है। ये ईशत प्रागभार नाम की जो आठवीं पृथ्वी है उसके ऊपर तीन वातवले हैं, उसमें से सबसे अंतिम वातवले में और उसके भी अंत में सिद्ध भगवान विराजमान है। और ऐसे मालूम पड़ते हैं मानो त्रिभुवन के मस्तक पर मुकुट ही हो। यहाँ लोक की पुरुषाकृति को दृष्टि में रखकर सिद्धों को मुकुट कहा गया है। जब ब्रह्म स्वर्ग के पास जो पांच राज्यों ऐसा होता है, फिर नीचे मध्य राज्यों में एक राज्य होता है, तो जैसे वो जो कमर है और ऊपर फैला हुआ हाथ है और नीचे पैर फैल कर कोई खड़ा हो, इस तरह से उसको उपमा देके पुरुषाकार कहते हैं। सिद्ध परमात्मा की निवास भूमि के विषय में तिलोय पन्नति में इस प्रकार कथन किया गया है, सर्वार सिद्धि इंद्रक विमान के। मंजूबेन, इंद्रक विमान क्या होता है? बहुत अच्छा, जो बीज का विमान है उसको कहते हैं इंद्रक। इंद्रक बिल सुना है? हाँ, सेंटर के बिल को इंद्रक बिल कहते हैं, और विमानों में सेंटर के इंद्र विमान को इंद्रक विमान कहते हैं। तो सर्वार सिद्धि इंद्रक विमान के ध्वज दंड से, वहां तक उसकी लिमिट बताई जाती है, द्वादश योजन मात्र ऊपर जाकर आठवीं पृथ्वी स्थित है। कोई कहते हैं कि एक बाल का अंतर है, ऐसा नहीं है। एक बाल का अंतर ऐसा कहने वाले हैं वो उसके लिए नहीं है। मेरु पर्वत के ऊपर एक बाल के अंतर से सर्वार अपना सौधर्म स्वर्ग है, वहां तो है, वो बात सही है, परंतु ये जो सर्वार सिद्धि से 12 योजन ऊपर जाकर ईशत प्रागभार वो पृथ्वी है, यानी सिद्धशिला इतने ऊपर है उसके। वो नीचे आना पड़ेगा ना, पर देर राशि नीचे आना पड़ेगा। आप कहते वहीं से धर्माभिषेक कर दे तो क्या है। आठवीं पृथ्वी स्थित है, यानी ये जो आठवीं पृथ्वी के नीचे सर्वार सिद्धि विमान है ना, वो कहाँ पर होगा? तो पृथ्वी के नीचे के जो वात वलय है उसमें होगा। कौन से वात वलय? प्रत्येक पृथ्वी के नीचे 20,000 योजन के वात वलय होते हैं। और बोलो कौन सा? वो मैंने प्रश्न पूछा, कौन सा? तनुवात वाले। आप क्या कहते हैं? पृथ्वी को लगते हुए होता है वो घनो दधी वात वाले होता है, फिर घनवात और फिर तनुवात। ऊपर उल्टे क्रम से है। हाँ, क्योंकि पृथ्वी को लगते हुए कहा ना मैंने, पृथ्वी को एडजस्टेंट जो है इमीजिएट, उसको पृथ्वी को टच करता हुआ वो घनो दधी वात वाले, उससे दूर है घनवात वाले और उससे दूर है तनुवात वाले। यानी हर एक पृथ्वी के नीचे इसी क्रम से, प्रत्येक पृथ्वी के तो नीचे ही है वात वाले और लास्ट पृथ्वी ऐसी उसके ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि ऊपर उल्टे क्रम से, पहले घनोदधी फिर घनवात और फिर तनुवात, और वो कम है, दो योजन एक योजन और एक योजन में कुछ कम, और नीचे तो 20,000 तो ये सर्वार सिद्धि आदि सभी विमान उस घनोदधी वात वलय में है। यहां लिखा कि सर्वार सिद्धि इंद्रक विमान के ध्वजदंड से द्वादश योजन यानी 12 योजन मात्र ऊपर जाकर आठवीं पृथ्वी स्थित है। ये सर्वार सिद्धि कितनी बड़ी है, व्यास उसका डायमीटर मालूम है? अरे अरे अरे, हाँ बोलो मंजू। सर्वार सिद्धि विमान 1,00,000 योजन, 1,00,000 योजन, जितना जम्बू द्वीप है उतना। हाँ, इंद्रक बिल जो अवधि इंद्रक बिल है नीचे का सातवें नरक का सेंटर का इंद्रक बिल वो भी 1 लाख योजन वाला, और वहां की सिद्ध शिला 45 लाख योजन वाली।
ये पूछना है कि
हाँ, घनोदधि वात वलय में सर्वा सिद्धि विमान और बाकी वो सारे अनुत्तर वगैरह उसी में।
हाँ, हम तो उधर ही
नहीं, नहीं हम ऊपर है और नीचे के पृथ्वियों के ऊपर वात वलय नहीं होते। हर एक पृथ्वी के नीचे पृथ्वी के आधार रूप वात वलय होते हैं, यानी पृथ्वियां इतनी भारी होगी उसका वजन वो वात वलय पर फैला हुआ है। अभी वो कहने की बात है क्योंकि हम व्यवहार से कथन कर रहे
हैं।
वो तो वातावरण कहेंगे उसको, एयर कहेंगे उसको, वात वलय में नहीं लेंगे, वहाँ वायु है, वायु नहीं उसकी बात नहीं है, तो वो वात वलय वाले वलय वो नहीं है यहाँ।
ये तीनों वात वलय का संबंध कितना है? नीचे के नीचे की
हर एक पृथ्वी के नीचे 20,000, 20,000 और 20,000 हर एक पृथ्वी के नीचे, ये सातों और वो आठों, आठों पृथ्वी इनके नीचे है। ये तो सातवीं नीचे की पृथ्वी के नीचे तो है ही है, उसके नीचे एक राजू प्रमाण जो निगोध की एरिया है उसके नीचे भी तीन वात वलय ऐसे ही 20,000 योजन के, और साइड में भी एक राजू तक ऊपर तक 20,000, 20,000 और 20,000 साइड में भी चहुओर, क्योंकि नीचे सात राजू बाय सात राजू का एरिया नीचे है, उसके तल में भी और साइड में भी 20,000, 20,000 और 20,000 इतना वात वलय का एरिया है। फिर ऊपर जाके वो बहुत कम हो जाता है, 7, 5 और 4 हो जाता है। उसके ऊपरीम और अधस्तन तल में से ये आठवीं पृथ्वी है, तो उसके ऊपरीम और अधस्तन तल में से किसकी बात चल रही है? उसी से प्रत्येक का विस्तार पूर्व पश्चिम में रूप रहित एक राजू है, ये किसकी बात चल रही? सर्वासिद्धि इंद्रक विमान से ध्वज दंड से द्वादश योजन मात्र ऊपर जाकर आठवीं पृथ्वी स्थित है, उसके ऊपरीम और अधस्तन तल में से पृथ्वी के ऊपरीम और अधस्तन तल में से प्रत्येक का विस्तार पूर्व पश्चिम में रूप रहित एक राजू है। वेत्रासन के सदृश वह पृथ्वी उत्तर दक्षिण भाग में कुछ कम 7 राजू लंबी तथा 8 योजन बाहुल्य वाली है। ये तो एक राजू उसकी हम कहेंगे विर्थ है, एक बाजू की एक भुजा एक राजू वाली और दूसरी भुजा 7 राजू है। कुछ कम इसलिए कहा कि वे भी बाजू से साइड से वात वलयों से लिपटी हुई है, इसलिए कुछ कम था, पर वहां साइड में ज्यादा नहीं है, 4, 5 और 3 योजन है। हाँ, ये नहीं, वो तो ऊपरी वाली ने पूर्व पश्चिम की बात है, प्रत्येक का विस्तार पूर्व पश्चिम में रूप रहित एक राजू है। वेत्रासन के सदृश वह पृथ्वी, यहाँ वेत्रासन क्यों लिया? क्या रूप रहित एक राजू है वो भी पता नहीं चला। वेत्रासन यानी वो मुंडा होता है ना, ऐसा नीचे ऐसा फैला हुआ, जिसे अधोलोक को वेत्रासन जैसे कहते हैं, वो वेत्रासन, वह पृथ्वी उत्तर दक्षिण भाग में कुछ कम 7 राजू लंबी तथा 8 योजन बाहुल्य वाली है। अभी इतना थोड़ा स्लोप ले सकते हैं क्योंकि लोकाकाश ऐसे ब्रह्म स्वर्ग से ऊपर तक ऐसा हो रहा है ना, तो पृथ्वी भी वहां पर थोड़ी ऐसी होगी नहीं के बराबर, परंतु पूरा वेत्रासन की उपमा तो अधोलोक को देते हैं। यह पृथ्वी घनोदधि घनवात और तनुवात इन तीन वायुओं से युक्त है, युक्त है ना, लिपटी हुई है। इनमें प्रत्येक वायु का बाहल्य 20,000 योजन प्रमाण है। इसके बहुमध्य भाग में यानी पृथ्वी के बहुमध्य भाग में, बहुमध्य भाग कहाँ लेना है, जैसे ऐसे सात राजू है उसके सेंटर में लेना और ऊपर से देखे तो सेंटर में, जैसे ऐसी फैले ना एक राजू और सात राजू, ये ऊपर की पृथ्वी है उसके सेंटर में। चांदी तथा स्वर्ण के समान नाना रत्नों से परिपूर्ण ईषद प्रागभार नाम का क्षेत्र है, जो क्षेत्र का नाम भी ईषद प्रागभार। यह क्षेत्र अभी यहाँ स्पष्ट शब्द से क्या लिखा देखो, यह क्षेत्र ऊर्ध्व मुखयुक्त जवल क्षेत्र के समान, छत्र के समान। ऊर्ध्व मुख ने ऊपर जिसका मुंह है, छत्र तो ऐसा होता है भगवान के मस्तक के ऊपर जो छत्र होते हैं, और इसका ऊर्ध्व मुख ने उल्टा कटोरा ऐसा ऊपर मुंह किया हुआ, जिसको त्रिलोक सार में उसको उत्तान शब्द आया है, मूल संस्कृत श्लोक में उत्तान करके। अभी ये नया फैशन चल रहा है ना, आपने नहीं सुना, बहुत लोग कहते हैं ऐसे, पूछते भी है हाँ कि ऐसे उल्टी है, आप कहते हो ऐसा नहीं है, ऐसा आकार नहीं है, ऐसा उल्टा आकार है, ऐसे कहने वाले मिले अपने शिविर में भी, कितने लोगों ने पूछा कि नहीं नहीं आजकल तो ये ऐसा नया संशोधन किया।
हाँ
सब बताते
हो, ऐसा क्यों करते हो, नहीं ऐसा बताया,
उत्तान का अर्थ उल्टा करता। अभी कितने स्पष्ट शब्द में लिखा है, यह क्षेत्र ऊर्ध्व मुखयुक्त धवल क्षेत्र के समान, क्योंकि जो परंपरा से चलिए फिर हमने कुछ नया संशोधन किया ऐसा भी वो लोग मानते हैं। ये पृष्ठ चार पर आगे बात के फोर, ऊर्ध्व मुखयुक्त धवल क्षेत्र, पूछते हो आधार क्या है, क्या है क्या, कुछ नहीं। ये सिद्ध शिला के बारे में कथन है। वह क्षेत्र ऊर्ध्व मुखयुक्त धवल छत्र के समान सुंदर और 45,00,000 योजन प्रमाण विस्तार सहित है। उसका मध्य बाहुल्य अष्ट योजन है, जितनी पृथ्वी है उतनी पूरी वो शिला भी है पृथ्वी के सेंटर में, और अंत में एक अंगुल मात्र है। अंगुल कहा हम तो उसको पेपर थिंग, वैसा कथन आता है उसके तो माखी के पंख के समान, ऐसा शासन में लिखा है। अष्टम भूमि में स्थित सिद्ध क्षेत्र की परिधि मनुष्य क्षेत्र की परिधि के समान है। ये गाथाओं के नंबर भी यहाँ उसके दिए हैं।
ये वेत्रासन शेप की बात है,
वेत्रासन उसको कहते हैं, ये जो ऐसा मुंडे ऐसा पहले बैठने के ऐसे आते थे ना आसन, वो बेल वाले के पास ऐसा होता है ना, वो नीचे रखते हैं, केन के बने हुए रहते हैं, वो वेत्रासन यानी ट्रायंगुलर, जिसे नीचे बेस बड़ा है और ऊपर नैरो है, उसको वेत्रासन कहते हैं। इसको वेत्रासन कहते हैं। जैसे अधोलोक का वर्णन करते समय ऐसा कहते हैं ये वेत्रासन उसको। अब इसके सभी डायमेंशन है ना, सभी ओर से, अभी इसको ऐसा करो तो ये ऐसा हो जाएगा, ये वेत्रासन हो गया। नहीं परंतु वहाँ केवल आठवीं पृथ्वी को देखना है, तो देखो आठवीं पृथ्वी में कैसा है, ऊपर है यहाँ पर, ये पृथ्वी ऐसी है। अभी इतनी वो लंबी है ही नहीं कि जितका यानी आठ योजन उसके में कितना होगा, पूरे 14 राज्यों में 8 योजन नहीं के बराबर है, ये पूरा 14 राज्य, और इसमें ये जो नैरो होता है तो 8 योजन में कितना कम मिलेगा ना उसको, वो तो सिद्ध शिला नहीं। पूरी पृथ्वी को भी अगर वेत्रासन रूप कहेंगे तो थोड़ा ऊपर टेपरिंग है, इतना ही ले सकते, उसके और कुछ नहीं ले सकते उसमें। हाँ सिर्फ ऐसा वेद्रासन यानी सिर्फ ऐसा, मैंने बताया ना केवल अधोलोक के लिए वेत्रासन शब्द आता है, पर यहाँ उन्होंने आठवीं पृथ्वी के लिए लिया। हाँ, अभी आगे बढ़ेंगे। त्रिलोक सार में अष्टम पृथ्वी को ईषद प्रागभारा कहा है। प्रागभार हम कहते हैं प्रागभारा क्योंकि पृथ्वी स्त्री वचन है, तो इसको प्रागभारा कह दिया है श्लोक में। त्रिभुवनम ऊर्ध्वारूढ़ा ईषत प्राग्भारा धराष्टमी रुंद्रा दीर्घा एक सप्तरज्जु अष्टयोजन प्रमित बाहुल्या। त्रिलोक सार के शिखर पर स्थित त्रिभुवनम ऊर्ध्वारूढ़ा, ऊर्ध्वा चाहिए ना कि ऊर्ध्वा चाहिए, ये अंदर पुस्तक है ना त्रिलोक सार, उसमें होना चाहिए। मेरे वो जैन भूगोल के प्लास्टिक बैग में है, हाँ वो बीच में डैश नहीं चाहिए। अष्ट योजना प्रमित बाहुल्या, देखो इसका अर्थ देखते हैं। त्रिलोक सार के शिखर पर स्थित, त्रिलोक सार नहीं चाहिए त्रिभुवन है ना, त्रिलोक के शिखर पर कहो या त्रिभुवन के कहो चलेगा। ये सार शब्द वो तो त्रिलोक सार तो ये ग्रंथ का नाम है, त्रिभुवनम उद्धार उड़ा लिखा है ना, तीन लोक कहो या तीन भुवन कहो, 5 5 6 नंबर। सिक्स ही निकला। वहां तिहुवन त्रिभुवनम मूर्धारूढ़ा, मूर्धा ही है परंतु वो एक शब्द है। हाँ दो शब्द नहीं है वे, एक शब्द है। त्रिभुवन मूर्धा रूढ़ा, और रू भी दीर्घ है रूढ़ा, वो तो रू दीर्घ है वहां पर, ये बीच में डैश नहीं चाहिए और एक शब्द चाहिए। ईषत प्राग्भारा धराष्टमी रुंद्रा बराबर है दीर्घा एक सप्तरज्जु, यहाँ भी एक सप्त के बीच में डैश नहीं चाहिए। अष्ट योजन प्रमित बाहल्या, यहाँ पर भी बीच में डैश नहीं चाहिए, और बाहुल्या नहीं है वो बाहल्या है। बाहल्या, बाहल्य है शब्द मूल है, हिंदी में उसका बाहुल्य कह देते हैं। त्रिभुवन के मस्तक करी आरूढ़, त्रिभुवन के करना, त्रिलोक के या त्रिभुवन के, त्रिलोक सार के नहीं, वो सार शब्द निकाल लेना बीच में से। त्रिलोक के शिखर पर स्थित, देखो हम चार पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, अभी हमने श्लोक पढ़ा था, अभी उसका अर्थ देखते हैं। त्रिलोक के शिखर पर स्थित ईषद प्रागभारा नाम की आठवीं पृथ्वी है, वह एक राजु चौड़ी सात राजु लंबी तथा आठ योजन प्रमाण बाहुल्य युक्त है। उस पृथ्वी के मध्य में जो सिद्ध क्षेत्र छत्राकार कहा है, उसका वर्ण त्रिलोक सार में चांदी का बताया है। तन्मध्ये रूप्यमयं छत्राकारं मनुष्यमहिव्यासं सिद्धक्षेत्रं मध्ये अष्टवेद प्रमहीनं बाहुल्यम्। उस सिद्ध क्षेत्र के ऊपर तनुवात वलय में अष्टगुण युक्त तथा अनंत सुख से संतुष्ट सिद्ध भगवान रहते हैं। ये तो कहां से आया, तथा का तो है, करेक्शन वाला तो है, सेंटर में तथा उन्होंने नथा का तथा कर दिया है। आठवीं पृथ्वी के ऊपर 7050 धनुष जाकर सिद्धों का निवास है। कितना लिखा? 7050 धनुष जाकर। अब ये कैसा लिया? हमने तो देखा था कि 2 कोस, 1 कोस और 1575। अभी 2 कोस के यहाँ पर एक एक कोस के धनुष बनाए, 1 कोस के 2000 धनुष, क्योंकि यहाँ महायोजन और महाकोश है। फिर भी ये 2000 के 4, 2 कोस यानी 4000 हो गए, 2 कोस के 4000 योजन हो गए, 1 कोस के 2000 हो गए, और फिर 1575 है। तो 7575 टोटल हुए, और उसमें से 525 तो सिद्धों की अवगाहना हाइट, सिद्धों के जहां उनकी लोअर मोस्ट लिमिट कितनी है? 525। तो 1575 में से 525 माइनस कर दो तो 50 रह गए, और ये 7000 रह गए। फिर से दोबारा हमने क्या देखा था? ये जो आठवीं पृथ्वी है उसके ऊपर 3 वातवले हैं। पहला वातवल है 2 कोस का, दूसरा वातवल है 1 कोस का, और तीसरा वातवल है 1575 धनुष। 1 कोस होता है 2000 धनुष का, यानी इसके 2000 दुनी 4000 इसके हुए, इसके 1 कोस यानी 2000 हुए, और इसके टोटल 1575। परंतु सिद्ध भगवान कितने क्षेत्र में विराजमान, तो मैक्सिमम उनकी हाइट कितनी है? तो 525। ये टोटल कितनी है एरिया? 1575। 1575 में से 525 गए, कितने रहे? 1050। तो यहाँ 1050, 1050 ये सिद्धों की लोअर लिमिट। तो कहते हैं इस सिद्ध क्षेत्र से या इस भूमि से सिद्ध भगवान कितने ऊपर है? तो 4, 2, 6, 7050 योजन ऊपर है। धनुष 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 योजन नहीं, योजन मैंने गलती से बताया, 2000 धनुष धनुष। मैंने इसलिए किया कि ऊपर से लेकर अभी वो वहां पर सिद्ध भगवान उनके टॉप मोस्ट है, उनकी लोअर लिमिट कितनी है? जैसे मैक्सिमम अवगाहना वाले 525 धनुष वाले होते, उतनी हाइट उसमें से माइनस की, वहां पर वो है सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान को इंक्लूड नहीं करना उसमें, सिद्ध भगवान की जो लोअर लिमिट है किसी सिद्धों की उसको लिया है। इन्हीं सिद्धों की अवगाहना को छोड़कर हो गया तो 7000।
इसका अर्थ अपन बहुत बार बोलते 525।
हाँ मैक्सिमम 525 है। हाँ उनकी थी वो अलग है, जैसे करोड़ पूर्व की उत्कृष्ट है उनकी 84 लाख पूर्व की थी, वैसे अभी सिमंदर भगवान वगैरह 525 वो विदेह क्षेत्र में, तो 525 वाले हाइट वाले होते हैं। यहाँ अपने यहाँ 525 वो तो मैक्सिमम हाइट किसी के होगी तो इतनी होती, अपने यहाँ चौथे काल में, अपने यहाँ चौथे काल में विदेह क्षेत्र में तो हमेशा कहीं, क्योंकि यही पर भोग भूमि थी। कितनी ज्यादा थी कि कम? उत्तम भूमि में तो 3 कोस मल्टीप्लाइड बाय 2000, यानी 6000 धनुष इतनी तो हाइट थी। एक धनुष समझते हो 6 फुट। चार हाथ का बताया ना, चार हाथ का एक धनुष और एक हाथ तो 1.5 फुट, इतना अपना नहीं लेना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखो देखो सिद्ध क्षेत्रम मध्य अष्ट वेद क्रमहीनम, यानी वो तो क्रमहीन बाहुल्य वाला लिया। ये सिद्ध शिला भी जो है ना बीच में, तो इस तरह से वो क्रमहीन होती है, ऐसा नहीं होती। ऊपर से तो समान लेवल पर है और नीचे ऐसी होती है, ये कर्वेचर नीचे की ओर है। अभी ऊपर प्रत्यक्ष लिखा ना ऊर्ध्व मुखयुक्त धवल छत्र, अष्टवेद क्रमहीन मध्य अष्टवेद क्रमहीनम। राजवार्तिक के अंत में लिखा है, ये राजवार्तिक भी ग्रंथ का नाम है, शास्त्र का नाम है। तीन कोस है,
6000
धनुष है,
6000 फुट
हमेशा मैक्सिमम बताई जाती है। अभी हम यहाँ का श्लोक पढ़ेंगे। तन्वी मनोज्ञासुरभि पुण्या परम भासुरा प्राग्वाराणाम वसुधा लोगमूर्ध्नी व्यवस्थिता नृलोकतुल्य विष्कम्भा सित छत्र निभाशुहा ऊर्ध्वं तस्याक्षितये सिद्धा लोकान्ते समवस्थिता। त्रिलोक सार के यहाँ पर त्रिलोक सार के लिखते हैं, त्रिलोक के मस्तक पर चाहिए। लोकमूर्धनि ने लोक के ऊपर, त्रिलोक के मस्तक पर स्थित प्रागभारा नाम की पृथ्वी है। प्रागभारा नाम वसुधा, वसुधा ने पृथ्वी जो तन्वी, तन्वी किसको कहते हैं, तुम्हारे जैसे थिन, तन्वी अर्थात स्थूलता रहित है, क्योंकि बाकी पृथ्वियां तो कितनी है ना, बड़ी बड़ी मोटी। पहली पृथ्वी तो 1,80,000 योजना और नीचे फिर कम हो जाती चली जाती है, फिर वो लास्ट वाली जो कितनी 8 योजन मात्र उसकी मोटाई है, इसलिए कहते वो तन्वी यानी थिन है। मनोज्ञ है, मनोज्ञ का अर्थ होते हैं मन को लुभाने वाली, मनोहर है, सुगंध युक्त है, पवित्र है और अत्यंत दैदीप्यमान है, परम भासुरा। यह पृथ्वी नरलोक तुल्य विस्तार युक्त है, यह पृथ्वी यानी वो बीच वाली जो सिद्ध शिला है उसकी बात कर रहे हैं। तो नरलोक यानी कितना बड़ा है, 45 लाख योजन उसके डायमीटर, ऐसी गोल है वो भी। श्वेत वर्ण के छत्र समान तथा शुभ है। उस पृथ्वी के ऊपर लोक के अंत में सिद्ध भगवान विराजमान है। सकलज्ञ सर्वज्ञ के बदले सकलज्ञ, सिद्धों का निवास स्थल ही यथार्थ में ब्रह्मलोक है। धवल वर्ण युक्त निर्वाण स्थल में महाधवल परिणति युक्त परमात्मा का निवास पूर्णतया सुसंगत प्रतीत होता है। ये महाधवल यानी महान पवित्र इसी परिणति युक्त सिद्ध भगवान वहां रहते हैं, तो कहते ये योग्य ही है। सिद्ध
भगवान
छत्र के समान, हाँ छत्री के समान लिया। क्योंकि वो मूल गाथा में भी उत्तान कहा उसको, इसमें भी लिखा है और ये त्रिलोक सार की मूल गाथा में भी उत्तान कहा शब्द आया है। और क्रमहीन बाहुल्य भी कहा है। यहाँ क्रमहीन यानी सर्वत्र अंत पर्यंत क्रम से घटती घटती मोटाई है। यहाँ तो लिखा है ऊपरी तल तो समान रूप है और नीचे से कम जा रहा है, कर्वेचर नीचे है। ये त्रिलोकसार में ही एक 557 नंबर की गाथा में लिखा है और उसी के नीचे भी लिखा है उत्तान उत्तान स्थितम अंते पात्रम एव तनु तदुपरि तनुवाते। यानी वो पात्र जैसा, उल्टा पात्र जैसा, यानी जैसे हम ऐसा रखेंगे कटोरा ऐसा। उत्तान का अर्थ है ऊपर मुख किया हुआ, उत्तान शब्द का अर्थ। हाँ, और ये त्रिलोकसान की 558 में उत्तान शब्द आया है। हमने यहाँ तो 57 पढ़ी थी, दो तीन गाथा है उसी के ऊपर है। आगे हम पढ़ेंगे नीचे। सिद्ध भगवान ने राग द्वेष मोहादि विभावों का त्याग कर स्वभाव की उपलब्धि की है, वे वीतराग हो चुके हैं, किसी की स्तुति से वे प्रसन्न नहीं होते और न निंदा से खिन्न नहीं होते हैं। वे राग द्वेष की दुविधा के चक्कर से परे पहुंच चुके हैं और हम उसी को करते हुए अच्छा मानते हैं। ऐसी व्यवस्था होते हुए मंगल गाथा में, मंगल गाथा ने ग्रंथ की आदि में जो मंगल किया जाता है, सिद्ध परमात्मा से प्रसन्नता की प्रार्थना का क्या रहस्य है? तो उनको ऐसा क्यों कहते हैं, आप हमें प्रसन्न हो जाओ? कहाँ लिखा है प्रसन्न हो जाओ? पश्यंतु शब्द आया था ना कुछ, देखो पहला नंबर जो मंगलाचरण हमने देखा था, पश्यंतु भड़ा रया सौवे। और कल हमने वो तो सूर्य देवता के बारे में भी पसीय सूर्य देवता ऐसा था, जिन्हें प्रसन्न हो। ये सिद्ध की पूजा में भी आता है ना प्रसिद्ध, ये कोई प्रसाद नहीं देते हैं, वो प्रसिद्ध भी नहीं है। सिद्ध भगवान की जयमाला याद है? बोलो। हाँ बोलो बोलो। प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह, प्रसिद्ध नहीं है प्रसिद्ध है, यानी वे मुझ पर प्रसन्न हो जाए इस तरह से यहाँ कहते हैं। तो उनके प्रसन्न हो जाओ प्रार्थना करने का क्या रहस्य? वो तो किसी से प्रसन्न होते नहीं है, ना ही किसी के राग द्वेष करते हैं। यह विशेष विचारणीय है, यदि भगवान यथार्थ में प्रसन्न हो गए तो उनकी वितरागता कहाँ रही, और यदि वे प्रसन्न न हुए तो प्रसन्नता की प्रार्थना अप्रयोजनिक ठहरती है। यथार्थ बात यह है कि प्रसन्न यानी निर्मल भाव पूर्वक प्रभु की आराधना करने वाला भक्त उपचार से प्रभु में प्रसन्नता का आरोप करता है। ये भक्ति में ऐसी कहने की पद्धति है, भगवान ना कुछ देते हैं ना वो कुछ प्रसन्न करते हैं, वो होकर कोई वरदान करते हैं हमको। आचार्य विद्यानंदी आप्त परीक्षा में लिखते हैं, कल आप्त मीमांसा का नाम आया था, किसने लिखी थी? आप्त मीमांसा। अकलंक की कौन सी थी? तत्वात्वाद की आई थी ना बात, आप्त मीमांसा हाँ इनकी थी। और यहाँ कौन सा नाम आया है? आप्त परीक्षा। आप्त है ना अरिंद भगवान, उनकी परीक्षा करके उनको नक्की करना है। क्योंकि भगवान की परीक्षा क्यों करना? क्योंकि हमें तो सर्वज्ञ स्वभाव का, सर्वज्ञता का सही भाव भाषण हो, इसलिए उनकी परीक्षा जरूरी है। तो कहते हैं वीतराग में क्रोध के समान संतोष लक्षण प्रसाद की भी संभावना नहीं है। जैसे उनमें क्रोध नहीं पाया जाता तो किसी पर संतोष हो गए, किसी से संतुष्ट हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, कुछ प्रसाद दिया, ऐसा भी नहीं होता। अतः प्रसन्न अंतकरण द्वारा प्रभु की आराधना करना वीतराग की प्रसन्नता मानी जाती है। यानी उनकी आराधना करते हुए हम प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न अंतकरण करते हैं तो कहेंगे भगवान प्रसन्न हो। इसी अपेक्षा से भगवान को प्रसन्न कहते हैं। जैसे प्रसन्न अंतकरण पूर्वक रसायन का सेवन करके निरोग व्यक्ति कहता है कि रसायन के प्रसाद से मैं निरोग हुआ, रसायने ने कोई औषधि। उसी प्रकार प्रसन्न चित्त वृत्ति पूर्वक वीतराग प्रभु की आराधना से इष्ट सिद्धि प्राप्त कर भक्त उपचार से कहता है कि परमात्मा के प्रसाद से मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। इस दृष्टि से वीतराग सिद्ध परमात्मा से प्रसन्नता की प्रार्थना की गई है। यही मंगलाचरण की बात यहाँ बताते हैं। आगे लिखते हैं, तिहुवन भवन पसरिय पच्चक्खवोह किरण परिवेदो वयोवियणत्थवणो अरहंत दिवायरो जयहु। ये नहीं आए ना इसमें अर्थ। वे अरहंत भगवान रूपी सूर्य जयवंत हो जो तीन लोक रूपी भवन में फैली हुई ज्ञान किरणों से व्याप्त है। देखो त्रिभुवन भवन पसरी है, त्रिभुवन रूपी भवन में फैली है, यानी तीन लोक रूपी भवन में जो फैली है। पच्छक अवबोध किरण, प्रत्यक्ष अवबोध यानी प्रत्यक्ष ज्ञान जो है, यहाँ केवल ज्ञान है। परिवेदो, उसे जानने वाले जो है, उयो भी अनथ वण अरहंत दिवायरो जयऊ। दिवायर यानी सूर्य, अरहंत रूपी सूर्य जो है वो जयऊ यानी उनके जय हो, वो जयवंत वर्ते। और वो कैसे है तो तीन लोक रूपी भवन में फैली हुई ज्ञान किरणों से व्याप्त है तथा जो उदित होते हुए भी अस्त को प्राप्त नहीं होते। क्योंकि सूर्य का उदाहरण तो दे दिया दृष्टांत, परंतु सूर्य उदित भी होता है, रास्ता चल भी चला जाता है, परंतु एक बार ये उदय को प्राप्त होते उसका कभी अस्त नहीं होता। भावार्थ, यहाँ अरहंत भगवान को सूर्य के साथ, अरहंत भगवान की सूर्य के साथ तुलना की है। सूर्य स्व पर प्रकाशक है, अरहंत भगवान का केवल ज्ञान भी स्व पर प्रकाशक है। लोक प्रसिद्ध सूर्य की अपेक्षा अरहंत सूर्य में विशेषता है। लौकिक सूर्य जबकि मध्य लोक के थोड़े से प्रदेश को आलोकित करता है, आलोकित यानी प्रकाशित करता है, क्योंकि वो मध्य लोक के ऊपर ऐसा घूमता है तो जहां जहां वो स्थित है उसके नीचे प्रकाश है। अभी यही सूर्य हम देखते आगे चला गया तो क्या हुआ, यहाँ अंधेरा हुआ, जब यहाँ हमारा अंधेरा है वहां अमेरिका में वो उजाला कर रहा है। तो थोड़े से प्रदेश को आलोकित करता है। तब अरहंत सूर्य सकल विश्व को प्रकाशित करता है, प्रकाशित करता है नहीं जानते हैं। सूर्य का उदय और अस्त होता है, किंतु केवल ज्ञान सूर्य का उदय तो होता है पर अस्त नहीं। जब कैवल्य का प्रकाश आत्मा में उत्पन्न हो चुका तब उस सर्वज्ञ आत्मा की ज्ञान ज्योति को कर्म पटल पुनः कैसे ढाक सकेंगे। अतः केवल ज्ञान सूर्य उदय युक्त होते हुए भी अस्त रहित है। यानी पूर्ण रूप से ये चार जो घाती कर्म है उनका पूरा नाश हो जाना, उसको निरावरण हुआ, निरावरण हुए बिना वो तो पूर्ण सर्वज्ञता नहीं हो सकती। सॉरी, निर्दोष हुए बिना, पहले निर्दोष होते वीतराग हुए बिना निरावरण नहीं होते, मुझे ये कहना, पहले निर्दोष होते ने पहले पूर्ण वीतराग होते हैं और फिर निरावरण हो जाते ने, पहले मोनी का पूर्ण नाश हो जाता है फिर आवरण वाले कर्मों का नाश होता है। वह अनंत काल पर्यंत प्रकाशित रहता है। अरहंत सूर्य की किरणें ज्ञानात्मक है और लौकिक सूर्य की किरणें पौद्गलिक है। उदाहरण देकर भी उसके साथ और भी क्या विरोध है वो भी बता दिया। तिरयण खगणिहाय नृत्तार्य मोह सेन्न सिरणिव आयरिय राउपसियौ परिवालिय भवियजियलो। तिरयण खगणिहायण, जिन्होंने रत्नत्रय रूपी खड्ग के प्रहार से, खड्ग समझते तलवार शस्त्र, खड्ग कहते उसको, मोह रूपी सेना के शिर समूह का नाश कर दिया है, यानी उस सेना का नाश कर दिया है, तथा भव्य जीव लोक का परिपालन किया है, वे आचार्य महाराज प्रसन्न हो गए। इन्हें मंगलाचरण करे, पहले सिद्धों को फिर अरहंतों को नमस्कार के रूप में मंगल किया, अब आचार्य की बात है। आयर्य राव पसियो, आचार्य राज राजा की उपमा दी उनको, ये प्रसन्न हो जाए। कैसे परिवालीय भव्य जीव लोक, जिन्होंने भव्य जीव लोक का परिपालन किया है, अब उसी का भावार्थ देखेंगे हम। यहाँ आचार्य महाराज की राजा से तुलना की गई है, अरहंत भगवान की सूर्य के साथ तुलना की गई थी, यहाँ महाराज राजा के साथ। जैसे कोई प्रतापी राजा अपनी प्रचंड तलवार के प्रहार से शत्रु सैन्य का नाश करता है, उसी प्रकार आचार्य परमेष्ठी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र रूपी अजेय खड्ग से, अजेय नहीं जो किसी के द्वारा जीता नहीं जाता उसको अजेय कहेंगे। ये उनका जो अजेय खड्ग तलवार का वो शस्त्र है, मोह रूपी सेना के मस्तकों का नाश करते, एक का मस्तक नहीं पूरी सेना के मस्तकों का, शिर समूह कहा था ऊपर। जिस प्रकार राजा अत्याचारी का अंत करके धर्मपरायण प्रजा का रक्षण करता है, उसी प्रकार आचार्य महाराज मोह का ध्वंस करके भव्यात्माओं का रक्षण करते हैं। मोह के कारण संसार में भव्य जीव बहुत कष्ट पा रहे थे, आचार्य महाराज ने रत्नत्रय से अपनी आत्मा को सुसज्जित करके अपनी पुण्य अभयवाणी तथा जीवनदात्री लेखनी के द्वारा जो वितरागता की धारा बहाई, उससे भव्यात्माओं के अंतकरण में जो मोह का आतंक था वह दूर हुआ। आतंक समझते, मोह से अत्यंत भयभीत थे और उन्होंने अपने निज रूप की उपलब्धि की। भव्यात्माओं को जब भी मोह का आतंक व्यथा पहुंचाता है, तभी वे आचार्य परमेष्ठी के चरणों का आश्रय ले अभय अवस्था को प्राप्त होते हैं। आचार्यों के उपदेश के द्वारा अपना स्वरूप हम खुद पहचानते हैं, तो आचार्यों ने हमारा उद्धार किया, ऐसा हम कहेंगे उसमें। आगे अभी उपाध्याय की बात है। अन्नानयंद गयारे अणोर पारे भमंत भवियाणम उज्जो जे कहो पसियंतु सया उवै छाया। जिसके ओर छोर का पता नहीं है, अणोर पारे, अण ओर पारे, ओर और छोर का पता नहीं है, ऐसे अंधकार अज्ञान अंधकार में भटकने वाले भव्य जीवों को जिन्होंने प्रकाश प्रदान किया है, वे उपाध्याय प्रसन्न होवे। समझ में आती है बात, ओर और छोर का पता नहीं, इतने अज्ञान अंधकार में वो अंधकार में फंसे हुए है, वो अंधकार का कहां अंत आ जाता है कोई पता ही नहीं है, बीच में भटक रहे उसमें। तो कहते उपाध्यायों ने ये जो उपदेश दिया है ग्रंथों का, तो उसके द्वारा हमें वो प्रकाश मिला, इसलिए उनके यहाँ मंगल रूप में उनको नमस्कार करते हैं। यहाँ अज्ञान को अंधकार की उपमा दी गई है। जिस प्रकार चक्षुष्मान व्यक्ति यानी आंखों वाला, ये चश्मे वाला ने चक्षु कहा है, हाँ, प्रकाश रहित स्थल में अंधे की भांति आचरण करता है, एकदम बिल्कुल जिसको कहेंगे बिल्कुल प्रकाश नहीं, टोटल ब्लैकआउट हो तो कुछ दिखाई नहीं देता है, तो अंधे को भी कुछ नहीं दिखता है, इसको भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो अंधे की भांति यानी अंधे के समान आचरण करता है। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान ज्योति के अभाव में यह जीव परद्रव्य को स्व मानकर, वो ज्ञान ज्योति नहीं ना उसके पास, तो अंधकार है उसके, तथा आत्म तत्व को अनात्म पदार्थ मानकर अंधे के समान प्रवृत्ति करता है, यानी है तो स्वयं ज्ञान स्वरूप परंतु फिर भी अपने को अनात्मा मान लिया उसने। इस मिथ्या ज्ञान रूप अंधकार के आदि अंत का पता नहीं चलता है, वह अपार है, उसमें भव्य जीव भटक रहे हैं और पर को अपना मानकर दुखी हो रहे हैं। यह मिथ्या ज्ञान का ही प्रभाव है कि जीव कल्याण के मार्ग को न पाकर 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता फिरता है। मैंने है तो सरल मार्ग परंतु उसको कुछ सूझ नहीं रहा है। कहते जैसे अंधकार में भटकने वाले जीवों को प्रकाश का दर्शन होते ही हित मार्ग सूझने लगता है, उसी प्रकार उपाध्याय परमेष्ठी के प्रसाद से सम्यक ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है, जिससे यह मोहांध प्राणी पंच परावर्तन रूप संसार का परिभ्रमण छोड़कर। ये पंच परावर्तन क्या होते हैं, नाम सुना है कभी? क्या क्या होते हैं? बोलो बोलो, पांच नाम बताने आपको केवल, पांच परावर्तन के, परिवर्तन को, परावर्तन को नहीं नहीं मालूम। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परिवर्तन और भाव परावर्तन। परिवर्तन को, परावर्तन को, एक ही बात। अनादि से इसने अनंतानंत परावर्तन कर दिए, तो उसको छोड़कर है तो भव्य परंतु अब तक उसको मार्ग नहीं मिला है, तो अभी क्या करेगा? उसको छोड़कर शाश्वतिक शांति में, शाश्वत यानी कायम स्वरूप शांति में, शिवपुर की ओर यानी मोक्ष की ओर उन्मुख हो जाता है, उसके ओर बढ़ता है, सन्मुख हो जाता है। उपाध्याय के समीप सविनय आकर भव्यात्माएं आगम का अभ्यास करती हैं और सम्यक ज्ञान का लाभ करती है, यानी आगम के अभ्यास से ही ये सम्यक ज्ञान का लाभ मिलता है। इस कारण अज्ञान अंधकार निवारण करने वाले उपाध्याय परमेष्ठी से प्रसन्नता की प्रार्थना की गई है। आगे पांच नंबर। दुहत्युवती साविण दिय त्रिभुवन भवियान सुठुरायेण परिठवियादम अपवा सुजलवाणपयाणेन। दुख रूप तीव्र प्यास से पीड़ित दुहत्युव तिसा, तिसा यानी तृषा, विनदीय, तीन लोक के भोगियों के प्रति त्रिभुवन भवियान प्रशस्त रागवश सुठुरायेण, यानी सुठु यानी सुष्ठ, सुष्ठ यानी प्रशस्त राग के कारण जिन्होंने श्रुत ज्ञान रूपी जल पिलाने के लिए धर्म रूप प्याऊ, प्रपाय प्याऊ स्थापित किए हैं, यानी परिठवी ने स्थापित किए हैं। धम्म पवा, ये प्याऊ समझते हैं, पानी की इंतजाम करते हैं ना, कोई नल बिठाते हैं, कोई बड़े बड़े बर्तन रखते हैं, तो उसको प्याऊ कहते हैं। इसके लिए जो पथिक है मार्ग में जा रहे हैं तो प्यास से वो व्यथित होते हैं, तो उनको पानी पिलाते, पिलाने के लिए व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ कैसे शुद्ध ज्ञान रूपी जल पिलाने के लिए धर्म रूप प्याऊ स्थापित किए। वे उपाध्याय सदा प्रसन्न होवे। नीचे कुछ शंका समाधान है, उसको हम देखेंगे। देखो शंका, वो फुटनोट में, राग परिणाम मोहिनी कर्म का भेद है। मोहिनी कर्म घातिया कर्मों में प्रमुख है। घातिया कर्म जब पाप प्रकृतियों में अंतर्भूत है तब राग भाव भी पाप प्रकृति रूप स्वयं सिद्ध होता है, अतएव पाप प्रकृति रूप राग परिणाम को सुठ यानी शुभ रूप कहना कैसे उचित होगा? समझ में ही पाप, ये शुभ राग भी तो मोहिनी का भेद है, उसके कारण होती है, तो उसको पाप को न पुण्य क्यों कह रहे? समाधान, इस विषय में संदेह निवारण हेतु महर्षि कुंदकुंद स्वामी के प्रवचन सार से प्रकाश प्राप्त होता है। वहाँ गेयाधिकार में राग भाव के शुभ तथा अशुभ रूप भेद कहे गए हैं। शुभो व अशुभो अवधि रागो, यानी वो जो आग है वो शुभ और अशुभ रूप दो प्रकार का होता है। उस ग्रंथ के चारित्र अधिकार में लिखा है, वो चारित्र चूली का है ना लास्ट में, रागो प्रसिद्ध भूतो, राग प्रशस्त रूप होता है, अतः राग परिणाम प्रशस्त रूप भी होता है, यह कथन आगम के प्रतिकूल नहीं है। यानी राग को प्रशस्त कहना ये कुछ प्रतिकूल बात नहीं है, क्योंकि उसके दो प्रकार के भेद पाए जाते हैं। राग को शुभ या प्रशस्त कहने का कारण यह है कि उसके द्वारा पुण्य कर्म का बंध होता है। कार्य क्या हुआ? पुण्य कर्म का बंध। उसका उपचार किसमें किया? वो राग भाव में। जिस रागात्मक चित्तवृत्ति के द्वारा पुण्य कर्म का बंध होता है, उस पुण्य बंध के उत्पादक राग भाव को, यानी उस पुण्य बंध को उत्पन्न करने वाला जो राग है, उसको आगम में शुभ राग या प्रशस्त राग माना गया है। शुभ भाव पुण्य बंध का कारण कहा गया है। कुंद स्वामी ने लिखा है ये प्रवचन सार में, शुभ परिणामो पुण्यम अशुभो पावत्ति भणियम अन्येषु परिणामो न डगदो दुख क्षय कारणम समय। शुभ परिणाम रूप राग भाव से पुण्य का बंध होता है, शुभ परिणामो पुण्यम, और अशुभ भाव से पाप का बंध होता है। अन्य में रमण न करने वाला शुद्ध भाव आगम में समस्त दुखों के क्षय का कारण कहा गया है। यानी दुख का क्षय किससे होगा? शुद्ध भाव से होगा। इस कारण शुभ राग भाव से प्रेरित होकर उपाध्याय परमेष्ठी दुखी जीवों का संताप दूर करते हैं। ये तो हमें मालूम है कि जो अंतरंग में स्थिरता नहीं हो पाती उनकी, तो वो क्या करेंगे? स्वयं अध्ययन करेंगे, अन्य जीवों को जिज्ञासु उनको पढ़ाएंगे, उपदेश दे देंगे। तो उन्होंने वहां कहेंगे वो प्रशस्त राग वश कर। भावार्थ, इस जगत के प्राणियों को विषयों की लालसा से जनित यानी उससे उत्पन्न लालसा, समझते चाह, तीव्र चाह, उसको पाने की तीव्र इच्छा। तो इस जगत के प्राणियों को विषयों की लालसा से, विषय किसको कहते हैं? जो पंचेंद्रियों के द्वारा तो हम जो के, हम तो जानने का ही कार्य करते हैं, पर मान रहे हम उनको भोगते हैं, और जिन पदार्थों को हम मान रहे भोगते हैं तो उसको कहेंगे, उस पदार्थों को कहेंगे विषय, और उसकी तीव्र चाह उसको कहेंगे विषय लालसा। तो विषय लालसा से जनित संताप, वो विषय लालसा ही हमें दुख का कारण है। हम दुखी है उस इच्छा से, तो विषय लालसा के कारण जो संताप उत्पन्न हुआ है सदा दुखी करता है, ये हमेशा ही दुखी करता है। आप कहो ना, जब जब उत्पन्न होती तभी दुखी करता है, बीच बीच में तो शांति होती है ना, तो कहते सदा, क्योंकि बाय द टाइम एक इच्छा पूर्ति के पीछे लगते तो दूसरी 10 इच्छाएं और उत्पन्न होती। महान पुण्यशाली देवेंद्र यानी देवों के इंद्र पुण्यशाली क्यों? क्योंकि अभी पूर्व में पुण्य किया था तो अभी उनको देवेंद्र पद मिला। चक्रवर्ती आदि भी उनके तो महान पुण्य का उदय चल रहा है वर्तमान में, तो कहते विषय तृष्णा के ताप से नहीं बच सके, यानी उनके भी विषय तृष्णा है, क्योंकि जो मिला है उसको भोगने की इच्छा है कि नहीं वहां पर, तो जितने प्रमाण में इच्छा है उतने वो दुखी ही है। क्योंकि हम तो दूसरों की ओर देख देख के लगता है हमको वो तो सुखी हो गए ना, अभी हमारे पास नहीं है हम इसलिए दुखी है। क्या सोचते हैं? हमारे पास इतना धन नहीं इसलिए हम दुखी हैं, परंतु उनके पास तो इतना है ना, वो तो अंबानी है या जो कोई क्या क्या नाम आते हैं ना आजकल सब पेपर में, तो वो तो सुखी होंगे कि नहीं, क्योंकि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतना धन कमाया। तो कहते कि वो विषय तृष्णा के कारण वे भी दुखी है। उनकी तृष्णाग्नि तो और अधिक प्रज्वलित रहती है। क्या कहा? यानी हमारे पास कितना है उससे कुछ लेना देना नहीं है, जिसकी चाह विषय लालसा अधिक वो अधिक दुखी है। हम तो मानते हैं कि जिसके पास पैसा है साधन सामग्री है वो तो सुखी होगा कि नहीं होगा, और इसी के लिए हमारे प्रयत्न चलते हैं उसी को प्राप्त करने के लिए। इस तृष्णा की शांति के लिए यह जीव विषयों का सेवन करता है, इसके लिए इच्छा मिटाने के लिए। डॉक्टर के पास कौन जाते हैं? रोगी है, बीमार है, और वो बीमारी का वो रोग का दुख सहा नहीं जाता, इसलिए उसका उपाय करने के लिए डॉक्टर के पास जाके औषधि लाते हैं, सेवन करते हैं। ऐसे विषयों के पास कौन दौड़ते हैं? जो विषय लालसा से दुखी है वो दुख मिटाने का उपाय करने के लिए बारंबार वहां दौड़ते हैं। हम तो कहते हैं हम तो सुखी है, हम तो इतना सेवन कर रहे हैं, किंतु इस वेदना तनिक भी न्यून होकर इन्हें कम नहीं होती, क्योंकि विषय प्राप्त करने से मान लेते कि इतने सब मिल गए तो अच्छा है ना, मिल गई ना, तो कहते उत्तरोत्तर वृद्धिंगत हुआ करती। आपने वो जलती हुई लकड़ी चूल्हा देखा है कभी गांव में? देखा है ना, तो उसको आग जलती है तो उसको बुझाने के लिए क्या करते, ऊपर घी डालना ना, क्योंकि घी तो हमने सुना है शीतल स्वभाव है, तो घी डालो उसके ऊपर, क्या होगा? और बढ़ेगी। ये ऐसा ही है। तो कहते इससे वेदना तनिक भी न्यून न होकर, यानी विषयों के कारण ये वेदना, किसकी वेदना? तृष्णा की वेदना न्यून यानी कम न होकर उत्तरोत्तर वृद्धिंगत हुआ करती, वो बढ़ती चली जाती। जिस प्रकार पिपासा कुल, पिपासा यानी प्यास, प्यास से आकुल यानी प्यास से दुखी व्यक्तियों की तृषा निवृत्ति निमित्त यानी उनकी प्यास बुझाने के लिए उदार पुरुष प्याऊ की व्यवस्था करते हैं। ये जो दानी होते हैं वो ऐसे प्याऊ जो पानी की व्यवस्था करते हैं, रास्ते पर है या कोई पथिक जा रहे अन्य अन्य जगह कि जहाँ आसपास कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ वो पानी की व्यवस्था कर देते हैं, जिससे सबको मधुर शीतल जल की प्राप्ति हो। उसी प्रकार उपाध्याय परमेष्ठी ने परम करुणा भाव से विषयों की तृष्णा से संतप्त भव्यों के कल्याणार्थ श्रुत ज्ञान रूप प्रपा स्थापित किए। प्रपा ने वो प्याऊ, क्या क्या
उनकी तृषा भी तो और अधिक प्रतियोगी
है। हाँ, प्रश्न क्या है?
तो वो क्या देवेंद्र और चक्रवर्ती के लिए लिखा है? वो तो सभी
सबके लिए, हमारे लिए भी लिखा है। वो उनको कहते देवेंद्र और चक्रवर्ती तो समय दृष्टि है, तो वहाँ पर भी जितनी तृषा है उतने तो उनको दुख होगा कि नहीं होगा? और ये तो सामान्य कथन रहता है। चक्रवर्ती भी मिथ्या दृष्टि रहते हैं कि नहीं? क्यों नहीं त्याग करके मुनि हुए? जो चक्रवर्ती पद में रहते हैं वो सातवें नरक में क्यों चले जाते हैं? नहीं नहीं, वो नहीं लेना है यहाँ पर, जनरल बात है ये। अब यहाँ तो जो विषय लालसा से जो संतप्त है, दुखी है, तो वो तो मुख्यतः मिथ्या दृष्टि की बात है। सम्यक दृष्टि को भी जितने प्रमाण में उतने दुखी है कि नहीं? वो उसकी यहाँ कहाँ चल रही
है?
हाँ, परंतु चक्रवर्ती सम्यत्व में मरता है, जो चक्रवर्ती अवस्था में मरता है। हाँ, तो सम्यक्त्व के साथ तो नहीं मरा है नॉर्मली, क्योंकि हाँ, तो पूर्व के वो समय दृष्टि थे, सम्यक्त्व में उन्होंने पुण्य बांधा था, सम्यक्त्व अवस्था में पुण्य बांध कर हुए ना। अभी होने के बाद वो सम्यक्त्व टिका रहे, ऐसे थोड़ी जरूरी है। अभी इतना धन मिला तो हो सकता है भ्रष्ट हो गए, वो पूर्व का पुण्य काम कर रहा है।
जो विख्यात भी थे वे भी चक्रवर्ती थे कि नहीं, ऐसा पहला पूछो। तो विख्यात भी थे, चक्रवर्ती थे, तो उनको आकुलता है कि नहीं? उसके लिए
चक्रवर्ती नियम से नहीं जाते। देखो ऐसा है, कुछ तो चक्रवर्ती पद में ही मरते हैं, तो नियम से सातवें नरक में जाते हैं चक्रवर्ती। अब जिन्होंने मुनिपना अंगीकार किया है उनमें से कुछ स्वर्ग में जाएंगे, कोई मोक्ष जाएंगे, जैसे जिसका पुरुषार्थ हो। परंतु अभी तो शला का पुरुष है, थोड़े अल्पकाल में जाएंगे, वो सातवें नरक में भी गए हैं, फिर भी अभी उन्होंने सम्यक्त्व कभी प्राप्त किया हुआ ऐसे वो जीव है, वो तो कालांतर से मोक्ष भी चले जाएंगे। ये जो सारे शलाका पुरुष होते हैं वो तो कुछ खास विशेष पुरुष होते हैं ना, तो सम्यक्त्व के कारण पहले वो प्राप्त करते हैं, फिर उसमें से कितने भ्रष्ट भी हो जाते हैं। ये रुद्र आदि भी बताए, वो भी क्या है, भावलिंगी संत थे, बाद में भ्रष्ट हो गए, मिथ्या मार्ग में चले गए, नरक में चले जाएंगे, कालांतर से आके मोक्ष भी चले जाएंगे। यहाँ क्या हमें इसका भावार्थ क्या लेना है, किसी विशेष व्यक्ति को है कि नहीं, ये विषय तृष्णा ही दुखदाई है और उस वो तृष्णा वो विषयों को भोग कर नहीं मिटती है, बढ़ती चली जाती है, तो उसको मिटाने का उपाय क्या है, तो आगम का अभ्यास, केवल अभ्यास नहीं, तो यहाँ कहते हैं कि श्रुत ज्ञान का पान करने से भोगों की अभिलाषा दूर हो जाती है।
जहाँ पर जो विषय चल रहा है उसका मर्म हमें लेना है, एक ही बात को पकड़ के पूरे दिनवाई को अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ तो कोई अपने यहाँ समस्या जैसा व्यक्ति का विषय तो नहीं
है, इन कशा बाकी है।
अरे
नहीं तो देव है ना, पहले स्वर्ग का देव पुण्य करके दूसरे चौथे जाना चाहिए, नीचे क्यों आया, मनुष्य में तीरंज में क्यों आते हैं जीव, ये साधारण इंद्र की बात छोड़ो, अहम इंद्र है, ऊपर जाने वाले ज्यादा पुण्य करके गए, फिर भी मिथ्या दृष्टि है कि नहीं, गिरे वेग तक। इंद्र तो नीचे के स्वर्गों के है, उनसे ऊपर जाने वाले का पुण्य ज्यादा होगा कि नहीं होगा। देखो देखो हम आगे देखेंगे। यहाँ क्या कहते हैं, शुद्ध ज्ञान प्रपा के जल का पान करने से मिला, नीचे से तीन तीन छह सात लाइन, भोगों की अभिलाषा रूप तृषा दूर होती है। हम तो मानते हैं कि उसको भोग भोगने से मिटेगी, तथा आत्मा स्वरूप की उपलब्धि कर महान शांति का लाभ करती है, क्योंकि आत्मा स्वयं शांति स्वरूप है और अपने स्वरूप को पहचानने से ही उसको पर्याय में शांति की उपलब्धि होती है। द्वादशांग रूप महाशास्त्र सिंधु में, सिंधु यानी समुद्र, यानी द्वादशांग, ये तो महासागर है, ऑर्डिनरी नहीं, तो कहते अवगाहन कर अपनी पिपासा की शांति साधारण आत्माएं नहीं कर पाती, अतः उनके हितार्थ प्रपा बनाई गई। क्या कहते हैं, ये स्वयं इस द्वादशांग का अभ्यास करके शांति प्राप्त करे, ज्ञान प्राप्त करके, ये हरेक की बस की बात नहीं। तो कहते जैसे महासागर में जाओ और प्राप्त करो, वहां डुबकी लगाओ, ये पॉसिबल नहीं है, तो प्याऊ बनाते हैं और लोगों की तृषा बुझाते। अतः उनके हितार्थ प्रपा बनाई गई, जहां अपनी मंदमति रूपी चुल्लू में श्रुत रूपी पानी भरकर, वो महासागर में तो डुबकी लगाने की योग्यता नहीं, तो क्या कहते हम अपनी अंजुली में चुल्लू भर इसमें पानी लेकर हम पीते हैं, अपनी तृषा बुझाते हैं, आत्मा पिपासा की शांति करती है। जितना जितना यह जीव श्रुत ज्ञान के रस का पान करता है और अपनी आत्मा को तृप्त करता है, उतना उतना वह संताप मुक्त हो शांति लाभ करता है। पहली पुस्तक का तो उन्होंने ही लिखा है ना पूरा बाबा। संधार्य शीलहरा उत्तार्य चरपमाद दुशील भरा साहूलयंतु सौवे शिव सुहपह संठियाहु निगलिय भया। जिन्होंने शील रूप हार को धारण किया है, संधार्य शीलहरा चिरकालीन प्रमाद तथा कुशील के भार को दूर कर दिया है, उतार यानी उतार दिया है। क्या चिर प्रमाद दुशील भरा जो शिवसुख के मार्ग में स्थित है, शिवसुख पह संठिया तथा निर्भीक है, निर्गलीय भया निर्गलित भया यानी जिसका भय निकल गया है, निर्भीक है, वे सर्व साधु जयवंत हो साहु जयंतु सव्वे भावार्थ। हार के धारण करने से कंठ शोभनीक मालूम पड़ता है, इसीलिए साधुओं ने शील रूप हार से अपने कंठ को भूषित कर दिया, भूषित किया है। कंठ में स्थित हार प्रत्येक के देखने में आता है। साधुओं की दिगंबर वृत्ति होने के कारण उनके शील रूपी हार को प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है। प्रायः संसारी जन प्रमाद तथा कुशील यानी अनात्म भाव में निमग्न रहता है। शील यानी आत्मा में लीन रहना ही शील है, किंतु मुनिराज प्रमादों का परित्याग करते हैं तथा ब्रह्मचर्य में निमग्न रहने के कारण कुशील रूप विकारी भाव से दूर रहते हैं। निरंतर कर्म शत्रुओं का संहार करने में संलग्न रहने के कारण उनके पास प्रमाद का अवसर ही नहीं आता है। आत्मकल्याण में वे सदा सावधान रहते हैं। महर्षि पूज्यपाद के शब्दों में ये नीचे उनके शब्द दिए हैं। मुनिराज बोलते हुए भी मौनी के समान रहते हैं और गमन करते हुए भी नहीं गमन करते हुए सरीखे हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हुए सदृश है, कारण उन्होंने आत्म तत्व में स्थिरता प्राप्त की। देखो नीचे क्या लिखा है, नीचे से चौथी लाइन, ब्रुवन अपि ही न ब्रूते गच्छन अपि न गच्छति स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन अपि न पश्यति। यानी बोलते हुए भी नहीं बोलता, ये कैसे होता है? आप हम अभी मैं बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही, तो बोलते हुए भी नहीं बोलती, उसका अर्थ क्या है? ये बोलने की क्रिया है, वो पुद्गल की क्रिया है, और जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया है उसके वो तो वो जानने रूप क्रिया उसकी अपनी लगती है, बोलने रूप क्रिया उसकी अपनी नहीं है, है ही नहीं है और उसको लगती भी नहीं है। वैसे अज्ञानी की भी नहीं है परंतु उसको लगती है मेरी क्रिया और मैं कर रहा हूं, ख्याल में ये बात। वैसे तो कोई जीव बोलता नहीं है, बोलने की क्रिया पुद्गल की है, परंतु अज्ञान अवस्था में उस क्रिया के साथ एकमेक मानता है अपने, इसलिए कहते हैं बोलते हुए भी नहीं बोलते, चलते हुए भी नहीं चलते, इस तरह से। संपूर्ण परिग्रह का परित्याग करके तथा सकल संयम को अंगीकार करने के कारण वे निराकुलता पूर्ण यथार्थ निर्वाण सुख के मार्ग में प्रवृत्त है। सकल संयम यानी वो अंतरंग में स्थिरता रूप उसकी मुख्यता है, बाह्य में तो होता ही है, ऐसा नहीं कि अंतरंग में हुआ और बाह्य में चाहे कुछ भी गृहस्थ अवस्था हो, ऐसी बात नहीं है। उन्हें जीवन की न ममता है न मृत्यु का भय है, यानी ऐसा नहीं चाहते कि अभी मैं और थोड़ा जीव तो अच्छा है या मैं अभी मर जाऊं तो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। तिलतुष मात्र भी, तिलतुष समझते हैं तल तल, हाँ, उसका तुष यानी उसका पोतरा छिलका, उतना भी परिग्रह न रहने से किसी प्रकार की भीति नहीं है। हमको भय किस बात का है? हमारी चीज कोई उठा न ले, कोई चोरी कर न ले जाए, कोई लॉस न हो जाए, तो उनके तो कुछ है ही नहीं परिग्रह, तो कोई भय ही नहीं है उनके। वे आत्मा को अजर अमर तथा अविनाशी आनंद का भंडार समझ भयमुक्त रहते हैं और हम भययुक्त रहते हैं। क्यों? ऐसी उज्जवल आत्माओं के प्रसाद से अनुवादक निर्विघ्न रूप से ग्रंथ समाप्ति के लिए मंगल कामना करता है। ये अनुवादक ने ये सभी रचना की है, हमने देखा ना यहाँ अनुवादक का मंगल ऐसा लिखा था पहले में, देखो अनुवादकर्ता का मंगल। अब मूल ग्रंथ का मंगल, मूल ग्रंथकार ने जो यह मंगल किया है उसको हम यहाँ देखते हैं। उन्होंने तो नमो जिनानम कहा था, यहाँ लिखते महाकर्म प्रकृति प्रारूप के प्रारंभ में गौतम गणधर द्वारा विरचित मंगल को वहां से उद्धृत कर, उद्धृत करना इन्हें कोट करना, भूतबली आचार्य इस शास्त्र का मंगल मान ग्रंथारंभ करते हैं, यानी उसी को मंगलाचरण मानकर वो ग्रंथ लिखने का आरंभ करते हैं। द्रव्यार्थिक नयाश्रित भव्य जीवों के अनुग्रहार्थ गौतम स्वामी सूत्र का प्रणयन करते हुए कहते हैं। अब नीचे जो लिखा है उन्होंने तीन नंबर में दवला टीका में जो लिखा है, एवं दौवठ्य जनानुग्रहणम, यानी द्रव्यार्थिक नय से जनों के अनुग्रह के लिए नमोकारम गोदम गोदम भडारहो गौतम भट्टारक महाकम्म पैर पाहुडस आदिहिम काउण, आगे भी लिखा है ओम ह्रीम अरहम नमो अरहंतानम नमो जिनानम, यानी उन्होंने नमो जिनानम ऐसा लिखा था उसी को यहाँ उद्धृत कर दिया। अर्थ जिन भगवान को नमस्कार हो, जिन्हें जिनेन्द्र भगवान उनको नमस्कार हो। विशेषार्थ जिन शब्द से तात्पर्य उन श्रेष्ठ आत्माओं से है जिन्होंने संपूर्ण आत्म प्रदेशों में निबिड़ रूप से निबद्ध, ये निबिड़ शब्द कहाँ लगाते हैं, जंगल कैसे तो निबिड़ है, थिक जंगल है तो उसको कहेंगे निबिड़। तो कषाय पाउडर नहीं तो भगवती आरा नहीं, हम देख लेते हैं तो कोई उसके लिए आगे शॉर्ट फॉर्म दिए होते हैं पीछे ये हो गया था। वो ग्रंथ का शॉर्ट फॉर्म है अरविंद भाई आपको पता है क्या, मिल जाएगा हम देखेंगे बाद में। हाँ परंतु आगे चलेंगे, विषय सूची में नहीं है ना उसका नाम कहीं पर, हमेशा वो शॉर्ट फॉर्म देते हैं किसका है क्या है। मिल जाएगा हमें तभी याद करेंगे उसको। हम कहाँ आए अभी, हम विशेषार्थ पढ़ेंगे अभी। जिन शब्द से तात्पर्य उन श्रेष्ठ आत्माओं से है जिन्होंने संपूर्ण आत्म प्रदेशों में निबिड़ रूप से निबद्ध, निबिड़ बहुत थिक जिसको हम कहेंगे, घातिया कर्मरूप मेघ पटल को दूर करके अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत दानादि नव केवल लब्धियों को प्राप्त किया है। अभी वो दर्शन के लिए नीचे लिखते हैं, या वो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन सकल आत्म प्रदेश निबिड़ निबद्ध घाति कर्म मेघ पटल विघटन, इसी का अर्थ उन्होंने किया है प्रकटीभूत, यानी उसके विघटन होना ने मेघ हट जाना उसके कारण क्या प्रकट हुआ है, अनंत ज्ञानादि नव केवल लब्धिवान जिन्हा, जिनेन्द्र भगवान किसको कहते हैं, तो ये अज्ञान अंधकार दूर हुआ है और गति कर्मों का नाश हुआ है और ये अनंत ज्ञानादि केवल लब्धि प्रकट हुई है। आगे लिखते अनेक विषम भवगहन दुख प्रापण हेतुन कर्मारातीन जयंती, निर्जरयंती इति जनाः, यानी अनेक विषम भव ग्रहण के दुख प्राप्त हेतु रूप जो कर्म है उसको उन्होंने जीत लिया है, उसकी निर्जरा कर दिया है, क्षय कर दिया, वो है जीना। अब ये गोमरसार जीवकांड मंद प्रबोधिनी टीका नहीं, मम प्रोटी, और ऊपर गोमरसार जीवकांड जीव प्रदीपिका। अब आगे देखते हैं, लास्ट लाइन, लास्ट पहली लाइन के लास्ट लास्ट में, जिन्होंने अनेक विषम भवों के गहन दुख प्रदान करने वाले कर्म शत्रुओं को जीता है, निर्जरा की है, वे जिन्हें, जो अभिनय हमने प्राकृत में पढ़ा था, जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश किया है, वे सकल अर्थात पूर्ण रूप से जिन कहलाते हैं। उनमें अरंत और सिद्ध गर्भित है, आचार्य उपाध्याय तथा साधु, एक देश जिन कहे जाते हैं। घाती कर्मों का पूर्ण नाश करने वाले अरहंत सिद्ध तो जिन है और बाकी एक देश जिन। शंका, इस पर विशेष प्रकाश डालने की दृष्टि से सूत्र के टीकाकार वीरसेनाचार्य कहते हैं, यह सूत्र क्यों कहा गया? समाधान, मंगल के लिए कहा गया है। पुनः प्रश्न उठता है कि मंगल क्या है? पूर्व संचित कर्मों का विनाश मंगल है। देखो नीचे दो लाइन, दो नंबर लिखा है, यहाँ लिखते किमठम इदम उच्चदे, ये क्यों कम बताया? तो मंगल अट्ठम, मंगल के लिए, किम मंगलम, मंगल क्या है? पूर्व संचय कम विनाशो, जो अभी हमने उसका उत्तर ऊपर अर्थ देखा है, इसी का भाषांतर है ऊपर, उसमें कुछ अलग नहीं है, हम हिंदी में ही पढ़ेंगे। देखो, शंका, यदि मंगल का यह भाव है तो यह सूत्र निष्फल है। कारण, जिनेन्द्र के मुख से विनिर्गत, विनिर्गत ने निकला हुआ है अर्थ जिसका, यानी जिसका अर्थ जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया गया है, जो अविसंवाद से केवल ज्ञान के समान है, जिसमें कोई दो राय नहीं, विसंवाद नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अविसंवाद है, बिना कॉन्फ्लिक्ट का है, तो केवल ज्ञान के समान है, तथा ऋषभ सेनादि गणधर देवों के द्वारा, ये आदिनाथ भगवान के जो गणधर थे उनका नाम पहले लिया, सभी तीर्थंकरों के, तो ऋषभ सेनादि में सभी आ गए, सभी तीर्थंकरों के गणधर देवों के द्वारा जिनकी शब्द रचना की गई है, ऐसे सर्व सूत्रों के पठन मनन तथा क्रिया में प्रवृत्त संपूर्ण जीवों के प्रति समय असंख्यात गुणश्रेणी रूप से पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा होती है। क्या कहते हैं? सूत्रों के पठन मनन और क्रिया में जो लीन है ऐसे जीवों के तो पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होती रहती है। ये तो शंकाकार की शंका, उसको भी आगे बताते हैं। कदाचित यह मंगल सूत्र सफल है तो ग्रंथ रूप सूत्र का अध्ययन निष्फल है, क्योंकि उससे उत्पन्न कर्म क्षय की उपलब्धि इसके ही द्वारा हो जाएगी। यहाँ वो ग्रंथकार, ये सॉरी शंकाकार क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ ये सूत्र क्यों लिखा? तो मंगल के लिए। तो मंगल क्या है? तो कहते कि पूर्वक संचित कर्मों का विनाश होना मंगल है। तो ये सूत्र लिखने की क्या जरूरत है? क्योंकि ग्रंथ पढ़ने से ही वो हो जाता है, कर्म का क्षय हो जाता है, एक बात, इसलिए सूत्र बेकार। अब कहेंगे सूत्र से ही अगर होता है तो आगे का ग्रंथ लिखने की क्या जरूरत है? सूत्र ही पढ़ो ना, बस नमो जिनानम कह दो, कर्मों का क्षय हो जाएगा, ये उसका कहना है। समाधान, यह ठीक नहीं है। सूत्राध्ययन द्वारा सामान्य रूप से कर्मों की निर्जरा होती है, किंतु इस मंगल सूत्र से स्वाध्याय में विघ्नकारक कर्म का नाश होता है, यानी स्वाध्याय निर्विघ्न बिना किसी विघ्न के हो जाए, इसके लिए मंगल किया जाता है। इस कारण मंगल सूत्र का प्रारंभ हुआ। फिर शंका, ये तो हमने जब धौलाकार धौला में पढ़े थे, जय धौला में, ये बहुत बार ये चर्चा वगैरह हो चुकी है, यहाँ उन्होंने उसी को उद्धृत किया है। शंकाकार पूछते हैं, तीव्र कषाय इंद्रिय तथा मुंह का विजय करने से सकल जिनों का नमस्कार पाप नाशक हो, कारण उनमें संपूर्ण गुणों का सद्भाव पाया जाता है, किंतु यह बात देश जिनों में नहीं पाई जाती, यानी उनके तो कषाय पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुए हैं। अतः नमो जिनानम सूत्र द्वारा अरहंत सिद्ध के सिवाय आचार उपाध्याय और साधु परमेष्टि का नमस्कार मानना युक्त युक्त नहीं है। यानी वो अरहंत सिद्धों को नमस्कार मानो ठीक बात है, परंतु जो आचार उपाध्याय जो साधु है वो तो एक देश है, वो संपूर्ण उनके वहां वैसे शुद्धि नहीं है। उसका समाधान यानी नमो जिनानम वगैरह जो है ना, वो वहां से ये सब लिया उन्होंने। रत्नत्रय की अपेक्षा पांचों परमेष्ठी समान है, क्या कहा, सम्य दर्शन सम्य ज्ञान सम्य चारित्र की अपेक्षा पांचों परमेष्ठी समान है, कारण सकल जिनों के समान एक देश जिनों में भी रत्नत्रय विद्यमान है। देवत्व के लिए रत्नत्रय के सिवाय अन्य कारण नहीं है। इससे सकल जिनों के समान देश जिनों का नमस्कार भी कर्मक्षयकारी जानना चाहिए। शंका, सकल और असकल जिनों के, असकल किसको कहा, एक देश आचार्य उपाध्याय साधु, रत्नत्रय में समानता नहीं पाई जाती, ये शंकाकार की शंका, क्योंकि अपूर्णता है ना। अभी संपूर्ण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय और असंपूर्ण रत्नत्रय में समानता का विरोध है। संपूर्ण रत्नत्रय का कार्य असंपूर्ण रत्नत्रय नहीं करते, कारण वे असमान है। ज्ञान दर्शन और चारित्र में समानता की उपलब्धि नहीं पाई जाती है। उसका समाधान, असमानों का कार्य असमान ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। अभी उसके लिए दृष्टांत देते हैं, संपूर्ण अग्नि के द्वारा क्रियमाण दाह कार्य की उपलब्धि उसके अवयव में भी देखी जाती है। यानी किसी उस वस्तु को जलाना है, कोई पेपर है जलना, तो बहुत बड़ी अग्नि लाएंगे तो जलेगा कि छोटा उसका अवयव पार्ट लाएंगे तो भी जलेगा। अमृत के शतघटों द्वारा संपादित किया जाने वाला निर्विषीकरण रूप कार्य चुल्लू भर अमृत में भी पाया जाता है। यानी अमृत का कार्य क्या है, तो विष को निर्विष कर देना, तो विष को निर्विष करने के लिए इतना सा अमृत काफी है, उसके लिए सैकड़ों घड़ों की कुछ आवश्यकता नहीं है। रत्नत्रय की अपेक्षा देश तथा सकल जिनों में भेद नहीं पाया जाता। जो कार्य अरियंत सिद्धों से होता है वही रत्नत्रय की अपेक्षा मुनियों के द्वारा भी होता है। अब पर्यायार्थिक नयाश्रित जीवों के कल्याणार्थ गौतम स्वामी आगामी सूत्रों को कहते हैं। ये मूल गौतम स्वामी के ही सूत्र इन्होंने उद्धृत किए हैं। कहते नमो ओहि जिनानम, अवधि ज्ञानी जिनों को नमस्कार हो। यहाँ जिन शब्द की अनुवृत्ति आगे भी करनी चाहिए, अनुवृत्ति यानी कंटिन्यूटी समझ लेनी चाहिए। अवधि ज्ञानी देव नारकी मनुष्य तथा तिर्यंच भी होते हैं। यानी अवधि ज्ञानियों को नमस्कार ऐसा नहीं, अवधि जिनों को नमस्कार, उन सबको नमस्कार करने से क्या कर्मों की निर्जरा हो सकती है, उससे तो कर्मों का बंधव ही होगा। जिन शब्द का ग्रहण करने से ऐसी आशंका का निराकरण हो जाता है, क्योंकि आगे जिन शब्द लगाए, इससे रत्नत्रय से भूषित अवधि ज्ञानियों को नमस्कार करना यहाँ इष्ट है। आगे कहते नमो परमो ही जिनानम, उसका अर्थ है परमावधि ज्ञानधारी जिनों को नमस्कार हो। ये परमावधि, ये अवधि ज्ञान के जो भेद है उसमें ये परमावधि ज्ञान भी होता है, और उन जिनों को यहाँ नमस्कार किया है इसकी चर्चा हम कल करेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकारो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत।